हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कुछ खूबसूरत और यादगार पल साथ में बिताने के बाद अर्णव और धृति दोनों कमरे में चले आए थे। अर्णव जब कपड़े बदलकर फ्रेश होकर आया तो धृति ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी कलाइयों में मौजूद चूड़ियाँ उतार रही थी, जिनकी खनखनाहट पूरे रूम में मधुर धुन बन बिखरी हुई थी। धृति बेहद खुश थी और ये खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। लबों पर गहरी मुस्कान अपना अधिकार जमाए बैठी थी। अर्णव की मोहब्बत से चेहरे की रंगत निखर गई थी। दिल उमंगों से भरा था और उन पलकों तले कुछ हसीन ख्वाब सजने लगे थे। आज वो खुद को बेहद खास लगने लगी थी और ये एहसास उसे अर्णव के प्यार ने करवाया था। धृति के खुशी से चहकते चेहरे पर नजर पड़ते ही अर्णव के लब बेसाख्ता मुस्कुरा उठे और किसी सोच के तहत अर्णव सधे कदमों से उसकी ओर बढ़ गया। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी धृति ने अपनी कलाइयों को चूड़ियों से आज़ाद किया और कानों से झुमके खोलने के लिए हाथ उठाए ही थे कि किसी की अचानक गर्म हथेलियों के अपने पेट पर फिसलने का एहसास होने पर वो बुरी तरह से चौंक गई। चिहुकते हुए उसने निगाहें उठाईं तो सामने लगे मिरर में उसके पीछे उभरे अर्णव के वजूद पर उसकी नज़र पड़ी। अर्णव तब तक उसकी पतली कमर को अपनी बाहों के घेरे में कस चुका था और अब धृति के कंधे पर अपनी ठुड्डी टिकाए प्यार भरी निगाहों से उसे अपलक निहार रहा था। धृति जो पहले हैरान थी, अर्णव की इस करीबी से बेचैन हो उठी। पेट में अजीब सी हलचल होने लगी, सांसें उलझने लगी और सीने में मौजूद दिल भी अलग अंदाज में धड़क उठा। आप फ्रेश होकर इतनी जल्दी आ गए? धृति के लबों से बमुश्किल ये अल्फाज निकले। जवाब भी उसी के अंदाज में आया। लग तो मुझे ऐसा ही रहा है कि मैं फ्रेश होकर आ गया हूँ। तो आप यहाँ क्यों चले आए? छोड़िए, मैं भी फ्रेश हो जाऊँ, धृति ने अपनी बेकरारी छुपाते हुए कहा और अपनी कमर पर लिपटी अर्णव की बाहों को हटाने लगी। शायद उसे डर था कि अगर कुछ पल और अर्णव उसके यूं करीब रहा तो वो लम्हा आएगा जब वो अपने इन अजीब से जज्बातों को काबू न कर सकेगी और बिखर जाएगी उसकी बाहों में। धृति की इन बातों और कोशिशों को अर्णव ने पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए शीशे में दिखते उसके अक्ष को निहारते हुए बेहद नरम अंदाज में कहा, कुछ है मेरे पास तुम्हारे लिए। धृति अपनी नाकाम होती कोशिशें देखकर झल्ला गई थी। अर्णव की बात सुनकर उसने हैरत से सवाल किया, अब क्या है? इतना कुछ तो कर दिया आज आपने मेरे लिए। तुम्हारी एक अमानत मेरे पास है जिसे मैंने पिछले 3 सालों से अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा है और हर पल उस लम्हे का इंतजार किया है जब तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटाकर मैं जिम्मेदारी से फ्री हो पाऊंगा, अर्णव ने संजीदगी से जवाब दिया। वही उसका ये जवाब सुनकर धृति के चेहरे पर सवालिया भाव उभर आए और दिमाग उलझ गया। मेरी अमानत? उसके सवाल पर अर्णव ने सहजता से हामी भरी। तुम्हारी अमानत जो आज मैं तुम्हें लौटाना चाहता हूँ, धृति सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी थी। वही अर्णव ने अब उसकी कमर को आज़ाद किया और पॉकेट में हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगा। कुछ ही सेकंड बाद धृति ने उसकी नरम उंगलियों को अपनी गर्दन पर थिरकते महसूस किया और नज़रें अपनी गर्दन पर ठहर गईं। उसका मंगलसूत्र, जिसे वो वहीं छोड़ आई थी, आज अर्णव ने उसे एक बार फिर उसके गले में सजा दिया था। धृति उस मंगलसूत्र को देखकर जितनी ज़्यादा हैरान थी उतनी ही ज़्यादा भावुक भी हो गई थी। धृति ने मंगलसूत्र छूने के लिए हाथ बढ़ाया पर उसकी उंगलियां कांप गईं। उसने थरथराती उंगलियों से उस मंगलसूत्र को छुआ। हल्की मुस्कान उसके लबों पर उभरी और आंखें छलक आईं। इस मंगलसूत्र को तुम छोड़कर गई थी पर मैंने हमेशा इसे संभाल कर अपने पास रखा, तुम्हारी अमानत के तौर पर, जो मुझे उम्मीद देता था कि एक ना एक दिन इसकी असली हकदार तक ये ज़रूर पहुँचेगा। आज तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटा दी और अब दोबारा ये कभी तुम्हारे गले से उतरना नहीं चाहिए। इसकी सही जगह यही है जहाँ वो अभी है और असली हकदार भी वही है जिसके पास ये है। इसलिए खबरदार जो दोबारा कभी इसे खुद से दूर करने का ख्याल भी तुम्हारे मन में आया। अर्णव ने तो जैसे धृति को समझाने के बजाय वार्निंग दी थी, जिसे सुनकर धृति हंस पड़ी, पर इस खुशी में उसकी आंखें भी बरसने लगीं। आज इसे अपना वजूद पूरा लग रहा था और अपने मंगलसूत्र को अपनी मुट्ठी में जकड़े वो रो पड़ी थी। अर्णव उसके मनोभावों को बखूबी समझ रहा था। उसने धृति के कंधों को थामते हुए उसे अपनी तरफ मोड़ा और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर बड़े ही प्यार और नरमी से उसके आंसुओं को पोंछने लगा। इतनी हसीन रात को अब यूं रोकर बर्बाद मत करो धृति, चलो चुप हो जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारे आंसू पहले दिन से मेरी कमजोरी रहे हैं। मुझसे इन खूबसूरत आंखों में आंसू का एक कतरा भी बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारी आंखों से बहते आंसू मेरा दिल जलाते हैं। चुप हो जाओ मेरी जान, जो भी हुआ भूल जाओ। अब तो हम साथ हैं और हमेशा यूं ही साथ रहेंगे, अर्णव ने बड़ी ही मोहब्बत से उसे समझाया। पर धृति अब भी पलके झुकाए सुबक रही थी। अर्णव कुछ पल बेचैनी भरी बेबस निगाहों से उसे देखता रहा, फिर आगे बढ़कर उन भीगी लरचती पलकों की नमी अपने लबों से चुरा ली। धृति एकदम से खामोशी हो गई और पलकों के झालर को उठाए गुलाबी आंखों से अर्णव को देखने लगी। वो आंसुओं से भीगा धुला धुला सा चेहरा, सुर्ख आंखें, लरजते लब और झुकती उठती पलके अर्णव पर कोई जादू सा करने लगी। दिल में अजीब सी हलचल होने लगी और मन बेकरारी से भर गया। धृति से नजदीकियों की, उसे अपना बनाने की ख्वाहिश दिल में मचलने लगी और इन्हीं एहसासों के तहत उसकी गुलाबी आंखों में झांकते हुए अर्णव ने अपनी एक बाह उसकी कमर पर रखते हुए उसे खुद से सटा लिया। दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर लगाकर उंगलियों को बालों में उलझाया और उसके चेहरे की ओर झुकने लगा। धृति अधखुली आंखों से उठती गिरती पलकों के दरमियान अपलक अर्णव को निहार रही थी, जिसकी आंखों में आज उसे अपने लिए मोहब्बत के साथ उसे पा लेने की चाहत भी मचलती नजर आ रही थी, जिसे वो धुतकार न सकी और उसकी मोहब्बत के सजदे में अपनी पलकों को झुका लिया। धृति की मौन स्वीकृति पाकर अर्णव का दिल रोमांचित हो उठा। उसके लबों ने उसके माथे को स्पर्श किया और धृति के चेहरे पर गहरा सुकून उतर आया। ये उसकी मोहब्बत की पाकिजगी थी कि उसने अपनी सारी बेताबियों और बेकरारियों को दरकिनार करके पहले उसके माथे को चूमा था। उसके बाद अर्णव के लब कभी धृति के झुकी पलकों पर ठहरे तो कभी उसके रुखसारों को मोहब्बत की तपिश से झुलसा गए। अर्णव की गर्म तपती सांसों को लगातार अपने चेहरे पर महसूस करते हुए उसकी धड़कनें बेचैन थीं और चेहरे पर अलग ही रंग बिखरे थे, जो अर्णव को और बेसब्र बना रहे थे। अर्णव आगे बढ़कर धृति के लबों को चूमता उससे पहले ही अपनी बिखरती सांसों को समेटे धृति, जो इन करीबियों से बेचैन थी और अजीब सी घबराहट भी महसूस कर रही थी, जाने किन एहसासों तहत अर्णव से दूर हट गई। उसके बेकरार कदम अर्णव से दूर जाने को मुड़े ही थे और अर्णव ने हाथ बढ़ाकर उसे थामने की कोशिश की, और इस दौरान अर्णव के हाथों में उसकी साड़ी का पल्लू उलझ गया। धृति को जैसे ही कंधे पर से साड़ी खींचती हुई महसूस हुई, उसके कदम ठिठक गए और हाथ सीने पर चला गया। अर्णव धीरे धीरे दोनों के बीच के फासलों को कम करता जा रहा था और साड़ी के जरिए धृति को अपने करीब लाता जा रहा था। कुछ सेकंड बाद दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। धृति की पीठ अर्णव के सामने थी। उस 2 इंच चौड़ी पट्टी वाले ब्लाउज से धृति की पूरी पीठ नजर आ रही थी। ऊपर 2 डोरियां लगी हुई थी। अर्णव से जरा भी सब्र ना हुआ, उसने हल्का सा झुकते हुए उसकी पीठ को अपने लबों से छू दिया। धृति उसके लबों के स्पर्श को महसूस करते हुए बुरी तरह कांप उठी। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि अर्णव अपने लबों से उसकी डोरियों को खोल चुका था। वो हड़बड़ाहट में उसकी तरफ पलट गई और इस हड़बड़ाहट में उसका आंचल उसके कंधे से नीचे सरक गया। धृति ने घबराकर अपने सीने को अपनी हथेलियों से ढक लिया।
अर्णव ने उसकी कमर पर अपनी बांह फंसाते हुए उसे अपने करीब खींच लिया और कुछ ही सेकंड में धृति का आंचल फर्श को चूमने लगा। वो आंखें मूंदे अपनी चढ़ती उतरती सांसों को नियंत्रित करने की नाकाम सी कोशिश करने लगी। अर्णव ने अब उसे छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हटकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। खुद में सिमटी हुई शर्माई सकुचाई सी वो गुलाबी परी बड़ी भली सी लगी उसे। आंचल के कंधे पर से सरकते ही उसकी पतली गोरी कमर और पेट नजर आने लगा था। उसकी चढ़ती उतरती सांसों के बीच सीने पर लगातार होती हलचल अर्णव के दिल को रोमांचित कर गई। बेसब्री दिखाते हुए उसने झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसके चांद से सुंदर चेहरे की कशिश में खोते हुए बेड की तरफ कदम बढ़ा दिए। टू बी कंटिन्यूड।